स्वागतमस्तु भूमित्रगणाः. अहं लीना मेहेन्दळे अस्मि. एतस्य रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे अहं प्रस्तुतं करोमि अस्माकं प्रियकार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति. भूमित्रगणाः, अद्य वयम् एकं दत्तात्रेयस्तवनं पठिष्यामः. स्तवनस्य रचयिता अस्ति श्री सुधांशुकविराजः, तथा च तस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादं श्री नानिवडेकर् महोदयः अकुर्वत्. शृण्वन्तु दत्तात्रेयस्तवनम्. अर्थात् हे मित्रगण, मैं लीना मेहेन्दळे रेडियो मधुबन के श्रव्य मंच पर अपना प्रिय कार्यक्रम पठामि संस्कृतम प्रस्तुत कर रही हूँ. और आज हम लोग दत्तात्रेय स्तवन अर्थात श्री दत्तात्रेय की स्तुति पर एक गीत या एक स्तोत्र पढ़ेंगे. परंतु मित्रों, थोड़ा सा आपको पहले दत्तात्रेय की कथा का स्मरण दिलाती हूँ कि अत्रि मुनि के पवित्र आश्रम में उनकी पत्नी अनुसुईया के साथ वे रहते थे. और एक बार सभी देवतागण अविचार पूर्वक यह सोच बैठे कि अत्रि ऋषि महान तपस्वी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, इसके साथ साथ वे शस्त्र संचालन में भी अत्यंत निपुण हैं. किसी न किसी प्रकार उनकी तपस्या को भंग करना चाहिए ताकि वे स्वर्ग पर आक्रमण करने या स्वर्ग को अपने कब्जे में लेने का विचार ना करें. लेकिन अत्रि ऋषि की तपस्या कैसे भंग की जाए यह सूझा नहीं, तो सारे देवता मिल करके त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की शरण गए और तीनों से सम्मिलित रूप से प्रार्थना की कि हे त्रिमूर्ति, आप तीनों मिल करके हमारी इस दुश्चिंता के लिए कोई समाधान निकालिए. तीनों ने आपस में विचार करके यह सोचा कि अत्रि ऋषि की तपश्चर्या भंग करना संभव नहीं है, परंतु कदाचित उनकी पत्नी अनसूया उनकी तपश्चर्या उनकी पवित्रता को भंग करना संभव है. तो इस प्रकार मन में विचार करके वे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश साधु का रूप लेकर के अनसूया की कुटी पर उपस्थित हुए और उनसे कहा कि हमें मन चाहिए भिक्षा दो. तो अनसूया ने पूछा कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या भिक्षा चाहिए. तब तीनों ने कहा कि आप हमें स्तनपान कराओ. यह सुनकर के अनसूया बड़ी चकित हो गई और चौंक गई. लेकिन अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से अनसूया ने तुरंत भांप लिया कि ये वास्तव में कौन हैं और किस हेतु से यहाँ आए हैं. तो अनसूया ने सोचा कि हालांकि इनकी नियत कुछ भी हो, परंतु इन्होंने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, तो इन्हें भी कुछ अपनी तपस्या का प्रभाव मैं दिखाती हूँ. इसलिए अनसूया ने तीनों से कहा कि यह मुझे स्वीकार्य है, चलो तुम तीनों बाल स्वरूप में आ जाओ. यह वाक्य अनसूया के मुंह से निकलते ही उसकी तपश्चर्या का इतना अधिक सामर्थ्य था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अपनी सारी क्षमता के बावजूद भी अनसूया की वाणी के प्रभाव को रोक नहीं सके और एक शिशु के रूप में तीनों का परिवर्तन हो गया. ऐसा शिशु जिसका धड़ तो एक ही था परंतु तीन सिर थे और छह हाथ. तो इस प्रकार तीनों देवताओं को बाल स्वरूप दे करके अनसूया ने अपनी तपस्या का प्रभाव दिखा दिया. और जब अत्रि ऋषि अपने काम से वापस अपनी कुटिया में आए तो उन्होंने भी इस कौतुक को देख करके अनसूया की सराहना की कि चलो अच्छा हुआ, अब ये तीनों देवता बाल स्वरूप में हमारे ही यहाँ रहेंगे. यह देखने के बाद स्वर्ग स्थित सारे देवी देवता घबरा गए कि ये क्या हमने किया. त्रिमूर्ति के कारण तो सारा संसार चलता है. ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रक्षण करते हैं और शिव उसको लय दिलवाते हैं. तो ये विश्व का पूरा चक्र ही रुक जाएगा अगर ये तीनों देवता वापस अपने स्वरूप में ना आ सकें. तो फिर सभी देवताओं ने मिल करके अत्रि और अनसूया के आश्रम में जा करके गुहार लगाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें आपने यहाँ बाल रूप में परिवर्तित करके जकड़ रखा है, उन्हें आप मुक्त करें। तो फिर देवताओं के मनाने पर और विश्व के चक्र को चलाते रहना है, इस बात को समझ करके अत्रि और अनसुया ने त्रिमूर्ति के तीनों विभूतियों से कहा कि ठीक है, आप अपना एक विग्रह इस बालक के रूप में छोड़ जाइए और बाकी आप मुक्त हैं, आप वापस अपने अपने धाम लौट जाइए और अपना अपना कार्य करते रहिए। लेकिन तीनों का एक छोटा विग्रह, एक छोटा अंश एकत्रित रूप में यहाँ मेरे बेटे के रूप में अवश्य रहेगा। तो इसी बालक का नाम पड़ा दत्तात्रेय, अर्थात अत्रि ऋषि को प्राप्त हुआ बालक। और यही दत्तात्रेय आगे चल करके महान अवधूत बने, ब्रह्मचारी रहे। और ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं अशांति हो, समाज में दुख या कष्ट हो, अव्यवस्था हो, वहाँ वहाँ श्री दत्तात्रेय पहुँच करके अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से अव्यवस्था को दूर करके वापस व्यवस्था को पुनः प्रस्थापित करते हैं। और यह गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में जो नाथ संप्रदाय कहा जाता है, उस नाथ संप्रदाय में भी श्री दत्तात्रेय का बड़ा ही महत्व है। और ख़ास करके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में श्री दत्तात्रेय को गुरु माउली अर्थात गुरु के रूप में माता कहा जाता है और इनकी आराधना की जाती है। तो ऐसे दत्तात्रेय के लिए लिखा गया यह स्तवन है, स्तोत्र है, जिसे कवि सुधांशु ने मराठी में लिखा है और अति लोकप्रिय है यह स्तवन, दत्त दिगंबर दैवत माझे। इसी का संस्कृत अनुवाद श्री नानिवडेकर महोदय ने किया है, तो आइए सुनते हैं। दत्त दिगंबर इष्ट दैवतम विराजते मम हृदये नित्यम। बहुत सरल है अर्थ कि दत्त दिगंबर ही मेरे इष्ट देवता हैं और मम हृदये नित्यम विराजते, मेरे हृदय में सदा ही इनका निवास रहता है। अनसूयायाः सत्वमद्भुतम् त्रिभिश्च देवैर्वृतम् शिशुत्वम्। तो अनसूया का यह सत्व अद्भुत था कि उसने तीनों ही देवताओं को एक साथ शिशु रूप दे दिया। चारुस्त्रिमूर्तिरवतारोयम् त्रिभुवन कीर्तिः रक्षित दीनम्। तो ये संधि है चारुस्त्रिमूर्तिरवतारोयम्। चारुः अर्थात सुंदर, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, अवतारः अयम्, तो यह अवतार है, उन तीनों का सम्मिलित यह अवतार है। और त्रिभुवन कीर्ति ही, इनकी त्रिभुवन में कीर्ति है। और आगे है रक्षति दीनम्, यह जो दीन दुखी हैं उनकी रक्षा करते हैं। त्रीणि शिरांसि च तत्कर षटकम् विलसति वदने मधुर सुहास्यम्। तीन इनके शिर हैं और उनके छह हाथ हैं। विलसति वदने मधुर सुहास्यम्, इनके मुख पर मधुर हास्य विलसता है, विराजमान है। दृष्ट्वा वत्सल सुंदर मूर्तिम हर्षाश्रुजलम स्नपयति दृष्टिम। तो इनकी यह सुंदर मूर्ति देख करके वत्सल अर्थात करुणामय, करुणा से भरी हुई सुंदर मूर्ति देख करके हर्षाश्रुजलम, हर्ष से आंसू निकलते हैं और उन आंसुओं के जल से स्नपयति दृष्टिम, जो आँखें हैं वे धुल जाती हैं। यान्त्युदयम् किल सात्विक भावाः शनैश्च विलयम् यान्ति ममत्वम्। यान्त्युदयम्, यान्ति उदयम् संधि है, इसे हम कह सकते हैं उदयम् यान्ति। तो उदित होता है, क्या उदित होता है, तो सात्विक भाव उदित होता है इनके दर्शन से, इनके स्मरण से या इनकी मूर्ति के दर्शन से सात्विक भाव उदित होता है। और शनैश्च विलयम् याति ममत्वम्, और ममत्व जो है, मोह जो है, संसार की वस्तुओं के प्रति जो मोह हम करते हैं, वह मोह भी शनैः शनैः धीरे धीरे विलय को प्राप्त होता है, अर्थात वह मोह हमसे धीरे धीरे छूट जाता है और हम उन्हीं के भांति अवधूत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, सुधांशु जी ने कई कविताएं श्री दत्तात्रेय के संदर्भ में लिखी, और यह जान करके कि नानी उडेकर जी ने इस दत्त दिगंबर दैवत माझे इस एक कविता का अनुवाद संस्कृत में किया था, तो सुधांशु जी ने उन्हें पत्र लिख करके और अपनी मराठी पुस्तक सौंप करके उनसे वारंवार आग्रह किया कि आप इन सारी कविताओं का संस्कृत अनुवाद करिए। तो फिर नानी उडेकर जी ने भी यथासंभव अधिकाधिक कविताओं का अनुवाद किया, और मराठी में ये सारी ही कविताएं किसी न किसी गायक के द्वारा सुंदर ढंग से गाई जा चुकी हैं। संस्कृत में भी इनके गाए जाने की संभावना अत्यधिक है। तो पठामी संस्कृतम के मंच से हम नानी उडेकर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। कवि सुधांशु जी जो अब नहीं हैं, उन्हें भी हम हृदय से आभार देंगे। और नेरल स्थित श्री जोशी जी ने मुझे इस संस्कृत अनुवाद के संबंध में बताया और संस्कृत अनुदित पुस्तक भी दी, उनका भी हम आभार प्रकट करेंगे और आशा करेंगे कि ये संस्कृत गीत भी गाए जाएं और उसी प्रकार से लोकप्रिय हों जैसे सुधांशु जी के मराठी गीत जो श्री दत्तात्रेय के संदर्भ में लिखे गए हैं। वे जिस प्रकार मराठी में लोकप्रिय हैं, दत्तात्रेय के मंदिर में उन्हें गाया जाता है, उसी प्रकार ये संस्कृत गीत भी गाए जाएं और लोकप्रिय हों। इसी शुभाशंसा के साथ मित्रगण, आज हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, पढ़ते रहो संस्कृत, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।